তিনি কি করলেন, তখন পাঠানোর পরে দেখলেন যে আচ্ছা টাকা পয়সা এসছে, তাহলে উনি তো অনেকের উপজীব্য, মানে উপজীব্য বলা হয় ওকে, উনি পিতা উপজীব্য দিতেন, অনেককে দিতেন, অনেক বৈষ্ণবগণকে, আর যে বৈষ্ণব আসতেন আসতেন তাকে সেবা করতেন উপজীব্য। এই জন্য তিনি বললেন যে ও আমি কিছুটা নিয়ে সব বৈষ্ণবদের পুরীতে, তার মাসে দুই দিন ওই পয়সার থেকে প্রসাদ হতো, সমস্ত বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ দিন, মহাপ্রভু পরিকার সঙ্গে আসতেন, মহাপ্রভু প্রসাদ পেতেন বৈষ্ণবদের সঙ্গে। তা একদিন হঠাৎ করে রঘুনাথ গোস্বামী বন্ধ করে দিলেন। তখন মহাপ্রভু বলছেন সুরদন্দকে, কি হলো রঘুনাথ আর নিমন্ত্রণ করে না? তো বলছে রঘুনাথ বলছেন বিষয় না, মহাপ্রভু বলছেন ভালো হয়েছে নিমন্ত্রণ করে না, রঘুনাথ ভালো কাজ করেছে। তবে কেন বলছে, বিষয় অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে না হয় কৃষ্ণের স্মরণ। হ্যাঁ, এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে। এই জন্য কাকে তার পিতা এত বৈষ্ণবের সেবা করে, তথাপি বলছে বিষয়, হ্যাঁ বিষয় অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে না হয় কৃষ্ণের স্মরণ। এই জন্য রঘুনাথ ভালো করিল, নিমন্ত্রণ বন্ধ করিল, রঘুনাথ আমার চিত্ত একটি জানতে পেরেছে। তা এখন রঘুনাথ কি খায়, কোথায় থাকে? তা রঘুনাথ এখন ছত্রে যায় না, সিংহ দরবারে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি কেউ প্রসাদ বিকাশ সন্ধ্যার পরে রাত্রে পরে ভজন পুরা হয়ে গেলে সেখানে লোকে দিয়ে যায়, সেটা নিয়ে আসে, যায় কিছু খেয়ে নেয়, একটু রেখে দেয়। মহাপ্রভুকে দেখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত করে, কদিন মহাপ্রু আসছেন, রাত্রে শয়নের পরে দুপুরের পরে আসে, দেখে যে দেখতে পাই না কোথায় রঘুনাথ। তা বলে রঘুনাথ এখন আর আসে না, সে ছত্রে গিয়ে নিয়ে খায়। বলে এটা বেশাবৃত্তি, দাঁড়িয়ে থাকলাম কে আসবে দিবে, দাঁড়িয়ে আছি সবকে দিচ্ছে আমাকে দিল না, চলে গেল, আচ্ছা ও আসবে দিবে, দাঁড়িয়ে থাকলো আবার ও আসবে দিবে, এই করতে 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 দু চার ঘন্টা চলে যায়, ভজন হয় না, উপর আশা রাখতে হয়। ওই জন্য ছত্রে গিয়ে জগন্নাথের প্রসাদের ছত্র আছে, সেখানেই মেনে এসে চলে যায়। তা কেন মন্দিরে তো যায় না, আমাদের রূপ রঘুনাথ মন্দিরে যেতেন না, ওই জন্য রঘুনাথ দাসগোস্বামী মন্দিরে যেতেন না, অর্থাৎ সনাতন গোস্বামী মন্দিরে যেতেন না, হরিদাস ঠাকুর মন্দিরে যেতেন না, কেউ যেত না মন্দিরে। জগন্নাথ বাইরে এলে দর্শন করতেন বৎসরে একবার, তীব্র উৎকণ্ঠায় লাল সাহেব, মন্দিরে কেউ যেত না, পাণ্ডাদের কেউ ছুটত না, আমরা পবিত্র শুদ্র এরকম জ্ঞান করে। আর আজকাল হরিনাম দীক্ষা হলো, সে বাপের মাথায় চড়ে বসলো, ব্রাহ্মণদের নিন্দা করতে আরম্ভ করলো, এটা কোনো নিয়ম নাকি, কোথায় বিহীনটা আসবে? তারপর তিনি ছত্রে খেতে, ছত্রে বন্ধ করে দিলেন। কোথায় খায়, ওই পশ্চিম দরবার দিয়ে আমরা যাই প্রায় আমাদের মন্দিরের রাস্তা দিয়ে, ওইখানে সব গাভীদের জন্য মালগুলো আছে, আর ওখানে একটা জায়গা তৈরি করা আছে, গাভীগুলো খেয়ে আর পারে না, পচা গলা যেগুলো হয়ে যায় সেগুলোকে তুলে নিয়ে এসে ধুয়ে 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 ফেলে দিয়ে একটু লবণ দিয়ে কোনো রকম করে খান, এই নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন, এরকম করতেন। তখন মহাপ্রভু বলছেন আহা এত সুন্দর জিনিস খায়। একদিন মহাপ্রভু গিয়ে দেখছেন দুই দিন খাচ্ছে, তা মহাপ্রভু নীতিনীতি তুমি এত উত্তম প্রসাদ খাও আমাকে দেও না, এই কথা বলে মহাপ্রভু এক গ্রাস জবরদস্তি উঠান দিয়ে লবণ দিয়ে খালি চটকে দিয়ে কবে এইবার খাবেন, তখন মহাপ্রভু এক গ্রাস খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে বলছেন তুমি এত সুন্দর প্রসাদ খাও যার মধ্যে সাত্বিক রাজসিক তাজসিক গুণ তো দূরে থাক, নির্গুণের চাইতে পরম নির্গুণ, আহা আমাকে দিলে না, আবার এক গ্রাস খেতে গেছেন, সুরদন্দ প্রভু হাত ধরে নিয়েছে, প্রভু আপনার উপযুক্ত নয়, আপনার জন্য
দাসের সঙ্গে খেতে দিলেন,
হ্যাঁ
দাসের সঙ্গে খেতে দিলেন, মানা করলেন না, সুরদন্দ প্রভু মাধুর শুধু মানা করলেন।
হ্যাঁ কেন, সাধক সাধক যিনি স্বয়ং ভগবান, ইন্দ্রগুলোকে দমন করে এমনি হবে ভাই, এমনি চঞ্চলতা যাবে। আমি নিজে বলছিলাম কালকে প্রভুকে, কোনো আমি বাইরের জিনিস যদি কোনো রকমের একটা জিনিস খেয়ে নিয়েছি, চঞ্চলতা বিষম অবস্থা, তা মাঝে মাঝে আমি 15 দিন 20 দিন 2 মাস 1 বছর পরে একটু চেষ্টা করে দেখি, একটু জীবাইতে দেখি, সেদিন মনে হয় বলছেন প্রভু আমি আজকে একটা পরোটা খেয়ে নিয়েছি, কারো তা বিমলার সঙ্গে এনেছিল বৃন্দাবন থেকে, বৃন্দাবন তো খাইনি কোনোদিন, একটা পরোটা খেয়ে দুটো পরোটা খেয়েছি আমি রাত্রে, সারা রাত ঘুমাইনি, আগুন লেগেছে শরীরে, কী করে যেটা খায় কী করে হজম করে আমি বুঝতে পারি না, কেন আমি ছোটোবেলাতে কোনোদিন খাইনি কারো হাতে, কারো বাড়ির খাইনি, মা রান্না করেছেন খেয়েছি না নিজে হাতে রান্না করেছি, মঠে মঠের প্রসাদ ছাড়া কোনোদিন খাইনি, কে আমি হজম করতে পারি না, চিত্ত চঞ্চল হয়ে যায়। নতুন আমার চিত্ত কোনই চঞ্চল নাই, ভালো আছেন, খুব শান্ত, খুব আনন্দ আছি। রাত্রে দুটো আড়াইটে ঘুম ভেঙে গেল, রাত্রে রাতে এক লাখ হরিনাম হয়ে গেল, কত আনন্দ হয়ে গেল। হ্যাঁ, সরস্বতী পাঠ হয়ে গেল, সাতটা সাড়ে সাতটায় সব শেষ হয়ে গেল, কত গুরুবারে গেছি বা আনন্দ হয়ে সারাদিন যত কিছু করি, কোনো চিন্তা নেই। তাই জন্য আর নতুন এই খেলে তামাসিক বৃত্তি এসে কিরকম চিত্ত চঞ্চল দূষিত করে দেয়, তাই জন্য জানতেন না আমরা। কেন ওটা তো নির্গুণ মহাপ্রসাদ, আমরা তো কিছু নাই, তারও আসক্তি নেই, ফেলে দিছি। এই যে আমাদের গুরুবর্গ বলেছে মাধবের ভিক্ষার কথা, কেন এক মুঠি আটা দিলে কারো আসক্তি নেই? না, এটার মধ্যে কারো আসক্তি নেই, এক মুঠি আটা কেউ ভিখারি এসে দিয়ে দিলাম, কিন্তু যেখানে এক গুড়া দিবে সেখানে এক এক মন দিবে, কোনো আসক্তি সকাল ওইটা খেলেই মরণ হবে। আর এই মোটা মোটা এই মেনে এনে এই যে উঠি হচ্ছে, ওতে কোনো কোনো পরবা নেই, কোনো চিত্তে চঞ্চল হবে না, বিচার হবে না। হ্যাঁ, এই বাংলায় মুষ্টিভিক্ষা এইটুকু চাল এনে খায়, কোনো দুঃখ হয় না। যেখানে প্রভাবে বিষয়ে প্রভাব এসে গেছে সেখানে মরণ।
কিন্তু কিন্তু এতে আবার কথা আছে, ওরা কি ভাবনা দিয়ে দিচ্ছে সাধু
না? ওই এক মুঠার জন্য কোনো ভাবনা থাকে না কারো। একজন দরজায় গেলেন, এক মুঠা যে দেয় কোনো ভাবনা নেই। এই যে আজকে যে এসছে যে জিনিসগুলো, এগুলোর মধ্যে ভাবনা আছে,
এগুলোর মধ্যে ভাবনা।
হ্যাঁ, এগুলোর জন্য এই জন্য এই জিনিসগুলো আমি কি করেছি, আগে আসছে অগ্রভাব আমি উঠিয়ে আগে তো ভাঙে গিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, দ্বিতীয় নম্বরে পান্ডাকে দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি 11 টাকা উঠি এখানে কম্বল আর কিছু ওকে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, তারপরে যা কিছু থাকলো এইবারে কৃষ্ণকে সমর্পণ করে দিয়ে তার বৈষ্ণবকে দিল। আর এর মধ্যে যারা নিজেরা গ্রহণ করছে, আমি দেখেছি চপ্পলের সে আমাকে দেখায় না, সোয়েটারের সে আমাকে দেখায় না, মোজা এসে আমাকে দেখে থাকবে কি করে, দুঃখ ওরা পাবে, তখন আমাকে ভুগতে হবে আবার। এই জন্য কিছু কথা নাই, দুঃখ নাই। সেই জন্য বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিচার মহাপ্রভু এক রাত খেয়ে, তারপর মহাপ্রভু একটা নিয়ম করলেন, দেখেন রঘুনাথ এবার তুমি উপযুক্ত, মনে মনে ভাবছেন এইবার বুঝতে পারেন যে এইবার ও ভগবানের সেবায় যাওয়ার মতন উপযুক্ত। তখন তিনি তাকে দিয়ে দিলেন গিরিধারের শিলিয়ার গুঞ্জামালা, নিজে যাকে সঙ্গে রাখতেন, চোখের জলে স্নান করাতেন, বুকে রাখতেন, মস্তকে রেখে রাত্রে তিনি স্নান করতেন, সেই আঙুলের ছাপ হয়ে গিরিধারে। হ্যাঁ, এই বুড়ো আঙুলের ছাপ আছে গিরিধারের মধ্যে একদম স্পষ্ট, সেই গিরিধার শিলা মহাপ্রভু তাকে দিলেন। কেউ বলে কোথায় আছে, কেউ বলে কোথায় আছে, কেউ বলে গোকুলানন্দে আছে, কেউ বলে ভাগবত মন্দিরে আছে, কেউ বলে এখানে, কেউ বলে ভাগবত মন্দিরে আছে, ভাগবত মন্দির ইস্কন যেতে গেলে পরে ভাগবত
আশ্রম বৃন্দাবনী আছে।
তা কেউ কোথায় বলে, আমি তো মহারাজের সাথে সব ঘুরেছি না, সব জায়গায় মহারাজ বাবাজিদের কাছে যেতেন, পাঠ শুনতেন, সব জায়গায় যেতেন, দেখতেন, আমরা কি আর সেরকম হতে পারবো? আমি মহারাজ কতবার বন্ধুবান্ধবের শাস্ত্রীর পাঠ শুনেছি, এই অনন্তের প্রভাবীর পাঠ শুনেছি, কিশোরদের
বাড়ির পাঠ শুনেছি,
মহারাজ আমাকে সামনে নিয়ে যেতেন, বেশি কাজে নিতেন, আমি একটুখানি নিরপেক্ষা তো। মহারাজ এখন বলেন না ইমেল উঠালে প্রেমানন্দ উঠাবে, মনে আছে? আর কেউ ছুবে না, যাবে না কেউ, উনি আমাকে জানেন শুরু থেকে আমি মহা নিরপেক্ষ, আমি একদম পরোয়া করি না কাউকে, শুরু থেকে একবারে যেদিন থেকে মাঠে সেদিন থেকে আমি বলছি পরবাক না, মেয়ে ছেলে একটি আমি দেখেছি আমার গুরুর বিরোধী, মহারাজের যে বিরোধী তার সঙ্গে জীবনে কথা বলি না কিছুতেই। আমি গোপীনাথ গোলি মাঠে যাই না, এই জন্য যেদিন মহারাজ গোপীনাথ গোলি মাঠে প্রথম অপমান করেছে, আমি আজ পর্যন্ত জল খাওয়া দিয়ে মোটে পাবিনি। মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছেন, তথাপি কোনো কাজ গেছে যে এতটুকু দরকার ততটুকু আমার, এমন আমার বিচার। আমি জেনে নিয়েছি এই মহারাজ বিরোধিতা করছে, তার মুখ দেখা ধরে তার ছায়া মারাবো না আমার, এতটুকু শুরু থেকে আমার গুরু মহারাজের বিরোধী হয়ে ওম প্রকাশ প্রভু আমার গুরু মহারাজের নিন্দা করেছিল। হ্যাঁ, আমি মুখের উপরে তাকে বলে দিয়েছি, আর তার বাড়ি আমি আর যাইনি, আর তার সঙ্গে কথাই বলি না। তোমরা যা কর করবে, আমার হৃদয়ের কথা আমি বলছি, আমি একমত কি দরকার কারোর সঙ্গে আমার
প্রশ্ন আছে, ওরা
বিরোধিতা করছে না, তোমরা বুঝবে না, এটা বিরোধিতা নয়। বিরোধিতা কাকে বলে জানো? বিরোধিতার দুটো কারণ আছে, গোড়া বই রসপোস্তা, ওরা মহারাজের প্রচার করছে, ওরা যেই পরিমাণে প্রবল ভাবে মহারাজের প্রচার করছে এইভাবে প্রচার, বেন বেন মহারাজ বেন রাজা ছিল আর কংস ছিল জরাসন্ধ ছিল, বিচার করতে হবে তোমাকে, অব্যক্তি দোষ অতি ব্যক্তি দোষ। কংস জরাসন্ধ মুখ ভগবত ধাম পেয়ে গেল, শিশুপাল নিন্দা করতে করতে ভগবানকে পেয়ে গেল, বেন রাজার দুর্গতি হলো। কেন? ওই যে ব্যক্তিটা নিন্দা করছে, সে নিন্দা করে সে আবিষ্ট হয়নি আর প্রচার করেছে না। না না, সে না, সে তো খারাপ হয়েছে নিন্দা করতে করতে প্রচার হয়ে কি নেই কৃষ্ণ কা, কৃষ্ণ নাম কি কোই ব্যক্তি হয়ে গিয়ে প্রচার করা কি নেই, ও অবিষ্ট থা ইয়ে লোক যা যা রা কর রা নর্মাল নাম কো ব্যক্তি হ্যাঁ, ইয়ে খারাপ হ্যাঁ, সহজ গিয়া হ্যাঁ, ঈশা হ্যাঁ, বিরোধী হ্যাঁ, পেপার মে ছাপা রা, ইমেল মে দে রা, ফ্যাক্স মে দে রা, সর্বত্র প্রচার কর রা, দিন রাত উনকে ইয়ে কামে মার দি প্রচার কর রা, এসে কোই করতা হ্যায় প্রচার? আজ যে ইয়ে লোক আপ লোক আয়ে কহাঁ সে আয়ে, মহারাজ নাম শুনে কহাঁ সে, ইস কনফ্লিক্ট তো শুনে হ্যাঁ, প্রচার উন লোকনে কিয়া কি, ও লোক যদি প্রচার নেই করে, মহারা নাম, মহারা নাম কি কোই ব্যক্তি হ্যায়, কোন প্রচার কর রা হ্যায়, ইস্কন কলা বা কোই প্রচার কর রা হ্যায়, মহারাজ কোই শিষ্য নেই, আজ তো প্রচার কিয়া যাকে, নাম মহারাজ নাম কি কোই ব্যক্তি হ্যায়, হ্যাঁ, ঘোরা বই পাওয়ার পেয়েছে, এরা তো দিনটা ওরা গুরুমন্ত্র করে না, ওরা তো গুরুমন্ত্র করে না, গুরুদেব ভুলে গেছে কি করছে, গুরু গুরুমন্ত্র একদম করে না, ওই গুরুকে নাম করে না, ওই নারায়ণ নম, নারায়ণ নম, দিনটা নারায়ণ নম জপ করছে, এদের তোমার শিষ্য যদি যাও না করতে উদ্ধার আগে হয়ে যাবে, ওদের কলমাস চলে গিয়ে অনার্থ গিয়ে ওরা মারাজ পাঁচ জন্য পেয়ে যাবে, চট করে গিয়ে ধূর্ত হতে হবে, উদ্ধার তো করতে হবে, এটা তো কোনো বৈষ্ণবকে সম্মান করবে না, কোনো বৈষ্ণবকে স্মরণ করবে না, কোনো বৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবে না, এরা তো অসুর, তো অসুর সব, কেন জন্ম থেকে মিলেছ সব খেয়েছি উল্টা পুল্টা, এদের তো কোনো সংস্কার নাই, এদেরকে যদি কোনো বৈষ্ণবের সঙ্গে আবিষ্ট মানে আমি না করাইতে পারি তাহলে এদের উদ্ধার হবে না, ওই জন্য জেনে শুনে আবিষ্ট করে দিয়েছেন, একদম জেনে শুনে একজনকে বিরোধী দাঁড় করে দিয়েছেন, জেনে শুনে দাঁড় করে দিয়েছেন স্বামীজির কৃপা এটা, এই জন্য এটা বুঝতে হবে না যে এরা বিরোধী, এরা বিরোধী না, বিরোধী কারা, বিরোধী কারা জানো বলবো, যেমন আমরা দিল্লিতে এখন প্রচার চলছে, আমাদের যে শিষ্য নামধারী কতগুলো লোক হয়েছে, যারা মহারাজকে ভালোবাসে বৈষ্ণবদের ভালোবাসে না, বৈষ্ণবদের সম্মান করে না, বৈষ্ণবতা বলে কিছু জানে না, মহারাজ কি বলেছে তুমি ঈশ্বরের নিন্দা করো, হ্যাঁ এটা কি মহারাজের উদ্দেশ্য, মহারাজ কখনো কোনো বৈষ্ণব নিন্দা করতে বলেন নাই, কোনো বৈষ্ণবের তাকে আদর করবেন এটা বলেন নাই, কেন তুমি নিন্দা করবে, এটা কি তোমার ভজন, তুমি কেন নিন্দা করবে, তুমি তো সদ্গুরু প্রাপ্ত করেছ, ওরা না এটা বুঝে না, তুমি কেন নিন্দা করো, তুমি কেন চর্চা করবে, এই অপরাধ করছে এরা, এরা মরবে, এদের গুরুদেব বাঁচাবে না, কেন এরা গুরুদেবের বিচার বুঝলো না, গুরুদেবের হৃদয়ের কাছে এলো না, এরা গুরুদেব কাছে না কাউকে জানে না,
এরা কথা বলবে যে মহারাজ নিজে তো বলছেন,
বলতে পারেন মহারাজ শ্রীবিক্রম মহারাজের, মহারাজ শ্রীবিক্রম মহারাজের বিরুদ্ধে কত কথা বলেন বলেন তো, আবার মহারাজ ডেকে নিয়ে আসেন, মহারাজ নিজে বলেন মহারাজ আপনি এসেছেন আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আপনি না থাকলে আমার কেউ ছিল না, এবার আপনি না আসলে আমার কি দুর্দশা হতো, গুরু বিরোধীতে বাদ করতে সব লোক কচ্চা সমঝদার নেই, আপকো জানতা না উনকো জানতা হ্যাঁ, দোনো যাতা হ্যাঁ, জো জানতা হ্যাঁ, মহারাজ বহুত শ্রদ্ধা আর কৃপা পাতা তো আপনি কৃপা তো ও বৈষ্ণব সেবা কি আপনি কৃপা আপনা আপ হয়ে যায়গা, ভাই বৈষ্ণব সেবা করেন গুরু কৃপা আপনা আপ হতা হ্যাঁ, গুরুকে প্রতি মমতা হোক আর গুরু কৃপা কর, গুরুকে প্রতি খুব আপনাকে দৃষ্টি দিয়া বৈষ্ণবকে অঙ্গুঠা দেখলা হ্যাঁ, তো ক্যা হোক উসকা, গুরু বচা লেগা উসকো, গুরুকে প্রতি তো শ্রদ্ধা পেলে হট যায়গা, সংস্কার তো বনা নেই আর তত্ত্ব সত্তা তো উসকা বনা নেই, ও কেসে হয়েগা, গুরু কৃপা ও লাভ করে রাখে না, এসলি গোরা বৈরি রস পুষ্টা, এ তো পড় লিয়া ভি থোড়ি দের পেলে, এসলি ভক্তি কহাঁ হ্যায়, ভক্তি কি বিচার বহুত গহন হ্যায়,
बैन लगा क्या था फिर?
बैन लगा क्या करता था? पहले तो ऋषि मुनि की निंदा करता, कुछ को पकड़ करके बचपन में पानी में डाल देता, मारता, फिर पिट काटता। फिर उसने क्या किया, वो सिद्धि की तपस्या किया, बड़ा भाई तपस्या करती, बड़ा भाई बल लाभ कर लिया। फिर बोलते कृष्ण को, बोलते तुम क्या कृष्ण? मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारा नाम वासुदेव नहीं, मेरा नाम वासुदेव, मैं पंडित वासुदेव हूँ, या मैं ओम हूँ, मेरा हजार हाथ है, स्वस्थ भाव बोल हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लकड़ी के हाथ लग वाली पंडित वासुदेव की तरह। विभिन्न प्रकार से अत्याचार करने कृष्ण के विरोधी बन गया शिव के बल से। जब शिव के बल से कृष्ण जा करके बोले साले उसको भी मारा, उसको देख ऐसे ऐसा कर भेजा, काट फाट कर देने उसकी गति नहीं। बहुत बातें हैं, सब विचारों को एक नहीं मानना पड़ेगा। उसमें भी कुछ लोग हैं जो कुछ निंदा कर रहे हैं, सचमुच में निंदा कर रहे हैं, आविक तो नहीं है किंतु निंदा भी कर रहे हैं, कि उनका दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? जैसे राम विजय सबसे बड़ा भारी महाराज जी घोर विरोधी था, निंदुक था, बदमाश था। वो यहाँ आया वृंदावन में, महाराज जी लेटर लिखा, जो भी आपने इस कंड के अंदर आया तो आपका ध्यान का पता चलेगा, ऐसे बड़ा कठोर शब्द लिखा। बुद्ध पूर्णिमा महाराज जाते ना इसकंड के हाफ पार्टी, तुम्हारा गूगल आया उन दिनों में, और ये लेटर लिख दिया था और उल्टा पुलटा व्यवहार किया। और वही राम विजय महाराज जी के पास मिलने आकर के निंदा करते करते ऐसे भक्त हुआ, अब लाख लाख रुपया लाकर महाराज जी फिरा है, 15 दिन में चला जाता, फिर लाके खेल देता है, मेरे को देता है, महाराज जी घूमता है। तो साधुओं को तो कोई चिंता है नहीं, साधु के निकट कैसे भी व्यक्ति आएगा उनकी निंदा करने, स्मरण करेगा तो, निंदा करके स्मरण तो करेगा। मैं क्या बोला था उसी पंडित की बात, पंडित की स्मरण कर रहा है, उसके साथ खेलता मिलता है, बदमाशी कर रहा है, रहते 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 एक दिन वो बड़ा पंडित बन गया। उसके बाप बोला ये कैसे हो गया, जिसकी चिंता कर वो व्यक्ति कैसे है, वही तो सोचना पड़ेगा। आप बताओ, आपके शिष्य हैं, आप अब दिन भर में कितने याद किया महाराज को बताओ हैं? ये क्या है, एक बार भी आप महाराज जी सुंदर हरी कथा सुना देते, और महाराज जी स्नेह करके हम लोग को कल्याण करके मारते पीटते गाली देते चेष्टा करते, एक बार भी याद आया गुरु की? और जो लोग प्रवचन कर रहे महाराज जी, हमारा शिष्य भी गड़ जाएगा, हमारी पार्टी भी गड़ जाएगा, हम क्या निंदा करेंगे, दिन रात अभी तो कोई प्रोग्राम बना रहा है, फैक्स भेज रहा है, देश विदेश में प्रचार चेष्टा चला रहा है, महाराज आए नहीं है, तो उनका क्या होगा बताओ? महाराज जी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे ये महाराज जी सकल स्वरूप तो उनके हृदय में बैठ ही गया, आकार हमारा बैठा, गुरु मंत्र करते समय स्वरूप नहीं आता है सामने, ये नहीं जानते हैं कैसे हैं, उनके कोई परिचय नहीं, इसलिए इन बातों की जो जितना अभिष्ट हो जाता है उनका इतना कल्याण है। व्यतिरिक रूप में एक अन्य रूप में व्यतिरिक रूप में, इसलिए इस विचारों को देखना पड़ेगा। मेरे को आज तब तो बात कुछ नहीं, इसलिए बोला हूँ आपसे, तुम्हारा ये फल है जी, सर कहाँ के कहाँ बात चले गई, चलो अब इसलिए मकर संक्रांति आज है, और उत्तरायण से सूर्य दक्षिणायन में जाएंगे ना, ना कि दक्षिणायन से उत्तरायण में आएंगे, दो चीज होता है, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। विषम पितामह युद्ध के बाद में पढ़े थे कि मैं दक्षिणायन में नहीं जाऊंगा, मैं उत्तरायण में जाऊंगा, उत्तरायण में जाने से अच्छी गति होगी, दक्षिणायन में जाना नहीं, ये बात है नहीं, उनका कुछ और बात था, कृष्ण आएंगे कृष्ण से मैं मिल सकूंगा, कृष्ण दर्शन देंगे, दर्शन के लालच से पढ़े थे, मुझे पांडव लोग आएंगे दर्शन देंगे, मुझे स्नेह करके कृष्ण सामने कृष्ण को मैं सब विकार के कृष्ण के सामने ईश्वरी को छोड़ दूंगा, मैंने जो कुछ इधर उधर किया कृष्ण सेवा के लिए किया, जीवन भर जो कुछ किया कृष्ण सेवा के लिए, वो यदि विरोधी पक्ष नहीं देते युद्ध ही नहीं होता, बताओ कृष्ण की महिमा बढ़ते ना पांडवों की महिमा बढ़ते। आज यदि विषम पितामह बोलते मैं नहीं ठीक है भाई ऐसे काम को कर लो, उन्हें भगवान की इच्छा जानकर कैसे काम किया, उसको पक्ष लेकर उसको को रुकमा डाला खत्म कर दिया, पृथ्वी का बाहर उतारा, तो वैष्णव के विचार ही दूसरा है, तो इसलिए वो अभी उत्तरायण सूर्य अब कहाँ थे, उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में कहाँ थे बता, दक्षिण में थे हैं, ठीक करते बोलो तू, सूर्य दक्षिण में होने से प्रभाव बहुत ज्यादा ताप ज्यादा होता है।
ठीक तो इधर से
ठीक है फिर तो अभी सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ अब आएंगे, अर्थात उधर विषुव रेखा को पार करके, विषुव रेखा बीच में है, इधर है कर्क इधर है मकर है। तो अभी सूर्य उत्तर से अब इधर आ जाएंगे दक्षिण में, तो अभी
छह
महीना एक तरफ छह महीना एक तरफ, इसलिए
गर्मियों में जो घर था वहाँ धूप पड़ती थी इधर
उत्तरायण में थे और आ जाएंगे दक्षिणायन में, मकर से मकर संक्रांति हो रहा है अभी। अच्छा अब सुनो, अब मकर सप्तमी के दिन बोलेंगे अभी जैसे का अभी आविर्भाव आएगा और जैसे का मकर सप्तमी तब बदलाएंगे ये सब बात, अभी इतना है तो सोचता हूँ, नहीं तो बात बदमोड़ बनता है। फिर आगे चलते हैं, आज के दिन गंगा देवी भगवान के कमंडल में जो ब्रह्मा जी ने चरण रूप जल रखा था, तब उस समय सगर महाराज जी यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, तपस्या आराधना करके सोचा मैं राजा बना, यज्ञ नहीं किया तो क्या है, सत्य युग की बात है, यज्ञ करना चाहिए, तो उन्होंने यज्ञ शुरू कर दी। जब 99 हो गया सवा होने जा रहा है, एक से यज्ञ होने से व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, इंद्र का लग गया डर, इंद्र को ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है, ये तो हमारा स्वर्ग का पद ले लेगा, इसे इंद्र ने क्या कर दिया, उनको घोड़ा चोरी कर ली, यज्ञ का जब घोड़ा चोरी कर ली ढूंढते ढूंढते बहुत चेष्टा की, एक बार लेने लग गए सन्यासी बन करके पकड़ कर ले आए, दूसरे बार ले जाने विभिन्न बार चेष्टा किया पकड़ कर ले आए, दूसरे बार ऋषियों ने कहा ये ले जा रहा है ले जा रहा है, ले चले गए लेके चला गया, कहाँ ले गया ढूंढने से मिला स्वर्ग मस्त पाता सब ढूंढ लिए 14 भुवन कहीं नहीं मिला। तब इन लोगों ने क्या किया, सगर महाराज 7000 लड़के थे, इन लोगों को ले जाओ कहीं भी वहाँ ढूंढ के ला, यज्ञ नहीं पूरा करने में जाऊँगा नहीं। अब इन लोगों ने पृथ्वी को खोदने लग गए, खोदते 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 एक तिहाई ही खोद दिया, खोद के मिट्टी ऊंचा करके पहाड़ बना दिया, इतनी ऊंची से पहाड़ पर्वत बना दी, आरावली पर्वत बना दी, चारों तरफ घेरा डाल दी, कोई आए नहीं, इतना ऊंचा घेरा डाल दूंगा कोई आए नहीं घुसे नहीं हमारे अंदर में, तो इतनी चेष्टा की इतना पहाड़ पर्वत बना दिया, कितना सजगता कर पर्वत बना मिट्टी से पत्थरों से। अब देखो इतना करने के बाद में जब जाकर के देखा कपिल देव जी का आश्रम, कपिल देव जी ध्यानस्थ हैं, घोड़ा सामने बांधे हुए हैं, ये बड़ा तंग आ गए मेहनत करते करते, कर्म का स्वभाव ये होता है क्रोध, कर्म करने से ज़्यादा कर्म करने से क्रोध हो जाएगा निश्चित आएगा, अच्छे व्यक्ति भी बर्बाद हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा देख करके बोला अच्छा घोड़ा चोरी करके ला करके ढोंगी ढोंग कर रहा है तपस्या कर रहा है, मारने के लिए चिल्लाने के सुर में चलने लगे, 60,000 लोग भाई साधारण बात है, मिल गया करने से भी 60 शब्दों में 60,000 कितने होते हैं, चार तरफ घेर लिए, इसने आँख खोला, खोलते ही बात सब लोग जल कर खाक हुए भस्म हुए, सगर महाराज ध्यानत हुए, इसके बाद उनके पुत्र हुए सुमंजस, उनके पुत्र दिलीप, इन लोगों ने बड़ी तपस्या करी पितरों के लिए उद्धार करने के लिए, कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद दिलीप के दो पुत्र दो स्त्री दिलीप मर गए तपस्या में जाके, उन दोनों स्त्रियों ने अब संतान तो नहीं है पति के विरह में, ये दोनों ही दोनों मिलने लग गए मतलब पुरुषों की तरह, दोनों आपस में मिला तो मिलने से उसमें से दोनों भगवान से रगड़ने से, तो दोनों के मिलने से एक 10 महीने के बाद एक के पेट से जो नीचे था उसके पेट से एक मांस का ढेला जैसा निकला, किंतु प्राण है हड्डी नहीं है, पुरुष नहीं है तो हड्डी कहाँ से होगा। इन लोगों ने क्या किया, बड़ा चालाक है, तो उन्होंने क्या किया उस मांस का ढेला को जैसे जेली फिश है जेली उसको लेकर के अष्टावक्र ऋषि जिस रास्ते से रोज दिन अपने आश्रम में जाते हैं उस रास्ते के किनारे में रख दिया। तो वो अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे, अति का वो हिलता तो है ऐसे ऐसा करता है जिससे कांप उठता है मांस का ढेला है किंतु कुछ है नहीं हड्डी नहीं, तो देख तू यदि हमें चिढ़ाता है हम तो अष्टावक्र है ना हमें चिढ़ाता है तो जल के खाक हो जाएगा, और यदि तू सचमुच में ऐसा बना हुआ है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, दिव्य महापुरुष निकलेगा तुम। और अब उसका वरदान निकला है, दिव्य महापुरुषों के सुंदर दिव्य शरीर होकर निकला, तो निकला। अब माँ, दोनों माँ जाकर के उठा कर ले आई, तो उससे भगवत से भगवत से रगड़ने से उसका नाम हो गया भगीरथ। तो इसलिए उनका नाम होगा भगीरथ। अब नाम रखा बगे, ओ भगीरथ ने पूछा, माँ यहाँ पिता कहाँ है? तो सच बुद्धि बतला दिया, बेटा तुम्हारा पिता तो तुम्हारे जन्म के पहले ही मर गए, तुम्हारा जन्म तुमने सब बोल दिया सीधा बात, तुम अष्टवक्र ऋषि के वरदान से तुम्हारा जन्म है, मतलब तुम्हारा ऐसे ही शरीर हुआ था। बोला अब क्या करूँ, तो तुम्हारा अब पितरों के लिए मैं क्या करूँ? बोले सब लोग तपस्या में गए, कोई लौट के आए नहीं, मैं भी तपस्या करूँगा। तपस्या में गए, सूर्य की आराधना की, सूर्य से प्रसन्न होकर जो उनको बोले, देखो मैं समस्त जीवों को रस प्रदान करता हूँ और समस्त जीवों को रस का संचार मैं करता हूँ और मैं देता हूँ। ऐसा करो, तुम इस रस से जीव का कल्याण नहीं हो सकता, जल रस होता है, तुम अपराकृत रस स्वरूप भगवान के चरण धो बने गंगा जी को ला करके इन प्राणों की संचार करो। वो लोग आग से जल करके जल रस के लिए रसहीन होकर के शुष्क होकर के विचरण कर रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, किंतु मेरा रस वो लोग पी नहीं सकते। एक पत्र अपराकृत भगवान के चरणों के धोबन से उनका उद्धार हो सकता है, उन्हें बड़ा अपराध किया है। और वो देख रहे हैं वो लोग कुश को पकड़ करके उल्टा लटक रहे हैं, देखा सब आत्मा बड़े दुखी हैं और इनके ऊपर सबका और भरोसा हुआ। तब इन्होंने तपस्या किया भगवान, हाँ ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी पितामह हैं, दया करके उनको थोड़ा सा वो दे दिया कमंडल से जो पानी, पर देखो मैं तो दूंगा, मैं कंगा स्वर्गलोक में दिया मंदाकिनी, पृथ्वी में पाताल लोक में भगवती के रूप में, पृथ्वी लोक में जरूरत नहीं हुआ था, तुम मांग रहे हो मैं दूंगा, किंतु ये धारण कौन करेगा? जब उतरेगा तो मैं छोड़ूंगा तो मैं तो नहातल को चली जाएगी। तो अरे शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी ने अपने शिव को धारण किया, शिव जी धारण करके शिव जी बोले जब तक मैं कभी भी ऐसे प्रसन्नता तो प्राप्त नहीं की, आज मेरे ऊपर में बड़ी कृपा है, आज मैं ऐसा आनंद पा रहा हूँ, मैं दूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं कभी, मैं अपने जड़ में रख दिया अपने मस्तक में, मैं धारण कर अब कभी नहीं छोड़ूंगा, जब छोड़ूंगा नहीं कहा, छोड़ नहीं रहे हैं, जड़ में रख दिया बस। अब धीरे उन्हें भगीरथ ने बड़ी शिव जी की आराधना की, हे पुराना आशुतोष थोड़ा दया करो, इतना सा छोड़ दो। तो उन्होंने बोला अच्छा थोड़ा छोड़ता हूँ, कैलाश से छोड़ा, कोना से धीरे धीरे तय कर जा करके भगीरथ लेके जा रहे थे, तो भगीरथ शंख बजा रहे हैं, शंख ध्वनि सुनकर गंगा जी पीछे पीछे आ रहे हैं, बोलो पीछे मत देखना, देखा नहीं, जब चल चल जा रहे हैं इतने में एक ब्राह्मण ने देखा, ये तो गंगा जी को लेकर के सारा भारतवर्ष को शुद्ध करके लेके जा रहे हैं, हमारे ये जो उधर बंगाल खाड़ी पूर्व बंगाल है उधर तो नहीं जाएगा। उसने एक शंख ले ली, ब्राह्मण ने उधर बजा दिया, तो गंगा जी पीछे जा रहे थे, गंगा जी उनके पीछे चले गए और जाकर पूर्व बंगाल में घुस गए। इतने भगीरथ पीछे देखते कोई गंगा जी है नहीं, पानी नहीं है, कल 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 आ रहे थे, नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया, पीछे रुक के दिखा तो गंगा जी है नहीं, समुद्र में मिलने जा रहे हैं उधर। फिर ब्राह्मण शंख बजाया उधर चला गया। भगीरथ ने फिर जाकर के गंगा जी प्रार्थना की, गंगा जी मैं क्या करूँ, मेरे को शंकर ध्वनि सुनकर उधर चला गया, बोले इधर नहीं इधर आना होगा, आपको कष्ट करना होगा। तो गंगा जी ने ब्राह्मण की अभिशाप दे दिया, तुम्हारा इधर जो आया बांग्लादेश में उसका नाम हो जाएगा पद्मा और मेघना, जाते समय पद्मा आते समय मेघना, तो ये पवित्र नहीं रहेगा। अर्थात जहाँ पर अब जाएंगे ना वहाँ फरक्का ब्रिज वहाँ से पूर्व बंगाल का बॉर्डर है, मतलब पूर्व बंगाल उधर है, तो वहाँ से बांध दे दिया हमारा इंडिया ने, और उनके लिए तो बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि कई देश मतलब कोई जिले पानी के अंदर चला गया, पानी बांध दे दिया ना पानी को, वो पानी जो गंगा का गया था वो पद्मा मेघना में मिल गया था, वो अपवित्र हो गया, और इधर का पानी जो है शुद्ध पानी गंगा जी का अब आने लग गया। तो फिर भगीरथ के पीछे 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 गोविंद जी जहाँ संत तक आए आए गंगा सागर नाम खाना चौबीस परगना कोलकाता कैसे आगे कोलकाता से करीब करीब 80 किलोमीटर दूरी पर बड़बाजार से धर्मतला से बास जाती है नाम खाना तक। फिर वहाँ से स्टीमर से जाना पड़ता है लॉन्च से पार करके। मैं गया था 2 साल पहले 3 साल पहले मैं गया था तो मथुरा के सब भक्तों को ले गया था बहुत दिन। तो फिर वहाँ गंगा कपिल जी के आश्रम में अब उस आश्रम में जब गए गंगा जी जाते सब लोग कपिल जी भी प्रसन्न हो गए। इसलिए ये तो गंगा सागर की आज के दिन की महिमा है। अब क्या होता है वहाँ पर गंगा जी में सब लोगों ने क्या आश्रम इसके बाद तो गंगा जी मिल गए सागर में और वो लोग सब उद्धार हो गए चले गए। वो कपिल जी के आश्रम में सब लोग आज भी इसलिए जाते हैं कि उसमें बताया यदि आदमी मर भी गया हड्डी भी है पापी कितना भी हो और राख भी हो कैसा भी हो एक बार यदि उस गंगा सागर में जाकर के कपिल देव जी के आश्रम में वहाँ जो भी गंगा जहाँ सागर में मिले हैं स्नान करते हैं तो उनके वो भविष्य वर्तमान जन्म के जितने पाप है तो दो तो हो ही जाएगा या साक्षात भगवान के चरणों में चरण प्राप्त कर लेगा इतना वरदान मिला। तो अभी ये लोग तो उद्धार होकर सब चले गए। गंगा जी क्या करती है कपिल जी के आश्रम सब अपने आप सागर अपने भीतर ले लेते हैं। ये 14 जनवरी जब आएगा तो अपने लाखों मील की एक दो मील लाखों मील की जगह छोड़ देते हैं एक दिन के लिए। 13 जनवरी के रात को जाएंगे तभी जगह देखेगा नहीं 14 जनवरी के सुबह देखेंगे रात को देखेंगे ना 13 जनवरी के रात के 12 बजे के बाद पूरा छोड़ देंगे आश्रम निकल आएगा। आश्रम निकल आएगा लाख लाख लोग एक दो नहीं लाख लाख करोड़ों करोड़ लोग इतना लोग कभी कभी की देख नहीं सकते आप सब जाएगा सब जाके गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं आजकल पहले भी था राजा महाराज लोग कहते थे वो राजा का डेरा डलता वो राजा का डेरा डलता राजस्थान राजा का फरहान राय आजकल अलग अलग स्टेट का और आज भी डालते हैं डेरा और व्यवस्थाएं होती है। अब तो भारत सेवा संघ रामकृष्ण मिशन गोड़ी उमर दुनिया भर के सब लोग जाते हैं सभी जाते हैं जाते कैसे नहीं। तो फिर सब लोग अपना डेरा डालते हैं सब खाना पीना व्यवस्था सब कुछ लाउड स्पीकर लाखों लाउड स्पीकर सब व्यवस्था कर देते हैं। फिर एक दिन तो जब 14 तारीख चला जाएगा कार का मार्ग का स्नान होगा सुबह 3 दिन का स्नान 14 जनवरी का मकर का स्नान और एक दिन पहले 13 का स्नान करते हैं और मार्ग का स्नान करते हैं या 2 दिन का जरूर करते हैं जो नहीं करते एक दिन का करते हैं। तो हर काल मार्ग का स्नान करके जो 5 पांडव लोग भी गए थे वहाँ तो सब लोग स्नान करते इससे बताते हैं सब तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार जीवन में यदि एक बार भी यदि उस गंगा सागर में स्नान किया उसकी महिमा और परंपरा है। मैं ये जो बक्सला मधुदु है इनको लेकर और वो तो हम गए थे तो किंतु देखो कैसा व्यवस्था हम आखिरी जा रहे हैं भीड़ कितना है सुबह से लेके रात के 9 बजे हमें लाइन मिली स्टीमर की।
अच्छा
स्टीमर की टिकट मिली सुबह से लेके खड़े खड़े धूप में और फिर भी भाई नाम तो जानते नहीं कहाँ जाना है। देखो चले गए बस में उठने की जगह नहीं हम बड़े बूढ़े ले गए थे मरण उन लोगों को ले गए जैसे जैसे बस धक्का क्या भीड़ है लाइन में बस में चढ़ना तो भी मिस खुश थी तो चढ़ा लाखों लाखों बस है भगवान गवर्नमेंट व्यवस्था की तब भी ऐसा होता स्टीमर कितने हैं फिर भी मुश्किल। फिर जाके हमें भगवान ने जाना कैसे जाना जाए दो चीज झोपड़ी वहाँ फूस का झोपड़ी बनते हैं और देखिए फूस ही बिछाते हैं अभी तो समुद्र ने छोड़ा अच्छा। अब बनते कैंप
सब गीला
हाँ सब गीला इतने मोटे मोटे फूस बिछाते हैं
और
क्या तो अभी तो छोड़ा है कीचड़ी कीचड़ है सूखे जमीन कहाँ से मिलेगा कीचड़ी तो है उसके अंदर रात को गुजरना है
बैठा पूरा समुद्र है समुद्र उठाकर छोड़ देता है।
हाँ समुद्र छोड़ देता
है आपके
और आपको 10-11 बजे पहुँचे थे रात भर किस तरह से कोई सोएगा कैसे इसमें पानी में तो बैठे बैठे रहे कोई सो भी सकते हैं हमने हमारे पास तो बेहतर था हमने और फूस एक ट्रक ले लिया था बिकती है और हमने बिछा करके तो हम उसमें सो भी गए थे कुछ लोग फूस ऐसे भी गर्म होते फूस को उड़ लो फूस बिछा लो बड़े गर्म होते धान का उधर में धान ऐसे नहीं है लंबे लंबे धान होते हैं उसके फूस भी लंबे लंबे होते हैं बड़ा सुंदर है नरम मुलायम होते हैं सोने की बड़ा मजा आता है। तो उस सब सो गए, फिर सुबह उठकर भी मुहूर्त में स्नान करने जाना था, किंतु मुश्किल है स्नान करना, बहुत मुश्किल है, श्रद्धा नहीं है तो मरे। अच्छा स्नान करने गए तो स्नान करने गए तो इतनी तकनी, बस मुहूर्त पार हो गया, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा, अब किधर जाए? अब तक तो रास्ता था, हर लाख लाख लोग स्नान कर रहे हैं, किधर जाएंगे आप? लाइटिंग की व्यवस्था थी, अब लाइट अब दिखता नहीं है कुछ, पानी दिख रहा है इतना हो गया, अब तो कहाँ कपड़ा रखा, कहाँ कुछ रखा, कुछ नहीं दिखे। और ये बंसल वंसल गए थे राकेश राकेश, अब तो वो लोग न मिले और कोई न मिले। मैंने बोला मेरे साथ विचार करने से अशोक हो गए, हाँ क्या हो गया, पानी का अंदर कहाँ ढूंढेंगे, रास्ता ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते 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 तभी इन ने बोला घर जाके भागवत करेंगे, हमारा राकेश यदि मिल जाए, वो यदि मिल जाए, भगवान से प्रार्थना किए खूब बहुत सारा। तब कहीं जा करके एक मील पानी चलते चलते चलते, इतना पानी भला नहीं, एक मील चला, किधर जाऊँ, आगे जाऊँ तो समुद्र और पानी ज्यादा, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, अंधकार कुछ दिक्कत तो है नहीं।
सुबह
3 बजे से 4 बजे से मुहूर्त तक नहाने की, और 4 से 6 तो, और कुहरा कुहरा भी तो रात दोपहर 12 बजे तक कुहरा, समुद्र के ऊपर कुहरा कैसे होता है? 12 बजे लाइट लाइट से दिखता नहीं कुहरा में कुछ भी, पानी के अंदर खंभा था पहले लाइट क्या, वो खंभा में कुछ नहीं, इन्होंने टेम्पररी बनाया, कहाँ चला गया पानी बढ़ा है, मतलब पानी बढ़ता है,
पानी कैसे बढ़ गया,
पानी नियम है, मुहूर्त पार हो जाएगा पानी बढ़ जाएगा,
इतनी जल्दी
एक दिन के लिए पानी, फिर इसके बाद पानी बढ़ जाएगा, जितने देर का मुहूर्त होता है इसके बाद पानी बढ़ेगा। तो वो लोग जानते ही जानते हैं, जानते नहीं उसका क्या हाल है, वो तो निकल के आ जाते हैं, फिर बाद में पानी भरते भरते फिर देखता हूँ हम ऊपर आ रहे हैं, बड़े मुश्किल लाउड स्पीकर अनाउंस करते हैं, उसमें लाख लाख लाउड स्पीकर अनाउंस करते हैं, तो मुहूर्त जा रहा है, पानी बढ़ रहा है, ऊपर आ जाइए, ऊपर किधर जाएगा देखिए, तभी तो बड़ा स्थिति खराब है, किन्तु पानी इतना ही आगे
पीछे ज्यादा नहीं बढ़ता,
ठंडा कितना है,
पीछे ज्यादा नहीं बढ़ता,
ठंडा कितना है, तान निकलता है, किंतु उसमें भी बड़ा परीक्षा है, कठिन, बहुत कठिन परीक्षा, पापी लोगों के लिए तो मरण है, धर्मात्मा के लिए बात नहीं। मैंने बोला बाबा ऐसे स्थान में कपिल देव जी की मैंने गलती की थी,
एक बार
मैंने पूजन नहीं करा, जाके दर्शन नहीं करा, जाके फुसफुस हो गया था,
टाइम नहीं था,
टाइम नहीं था, और ऐसे भी नहीं था, बुद्धि भी ऐसे नहीं थी, कुंती देवी को माँ को देवती को वही कपिल देव जी का आश्रम, फिर वो पानी से निकल आता है, आजकल जो ऊपर बना रखा है वो ऐसी चीज नहीं, पानी के अंदर जो निकलता है वो
ऐसी पानी के अंदर निकलता
है, पानी छोड़ देते हैं मंदिर को,
ऐसे बना हुआ एकदम,
एक बार चापू निकलता है
तो बना हुआ वैसे का वैसे,
वो
तो बेकार की बात है, नाली में खाई में ना करके चले जाते हैं, लोगों को दिखा के बहकाते हैं, जो बाद में गंगा सागर नहाने जाते हैं,
बाद में जाते
हैं तो वो कहाँ नहाएंगे, वो खाई में वो जो वो पानी काट कर आते हैं, अरे छोड़ बाद में जाने से बचा, तुम्हारा नाम है नाम खाना, पहले जगह पड़ते हैं नाम खाना, जानते हैं अर्थात जहाँ जाकर नाम लिखाने पड़ते हैं, अभी कीमत के लिए नाम खाना में जाना पड़ता है, कागदीप नाम खाना ये सब जगह है, बहुत इसका रहस्य है। तो अब छोड़ो इस बात, इसमें ब्रज में हमारे श्याम सुंदर कन्हैया क्या किया, और सब ब्रजवासियों ने कह दिया अरे भैया ये काम का क्या है, वो सब तीर्थ सब लोग तीर्थ में गए, हम तो बड़े पापी हैं, इतना दुख हो गए हैं, कभी आकाश हो जाता है, कभी बखास हो जाता है, कभी दबाना लाते हैं, कभी कोई आता है, कभी तंग करते हैं हमें, तो भैया एक बार गंगा सागर ले चल, हम सबको नहा के लाया लाएगा तो हम सब उनके उद्धार कर दे तू। तो बोले भैया अच्छा मैं सोचूंगो, बोले सोचोगे सोचेगो कब, अभी तो काल के दिन रहेगो, अभी तो जानवा है छोड़ने, तू छोड़ना है तो अरे चिंता खाई कर, बड़े बड़े इनके दिमाग ही नहीं है ना, हम बारे में कि बालागन की स्वभाव यूँ है कि अभी कूदेंगे फादेंगे तो पहुँच जाएंगे, अरे तो बड़े बड़े कैसे जाएंगे, कंधे पे लेके चलेंगे, अरे सिद्धांत को जानो कि ना ये सिद्धांत में बालक हो, ये तो हमें कंधे पे चढ़ाते नहीं, छलांग लगाते हैं इस पर को उस पर भाजिया है, कोई बात ना है, गंगा सागर किसको है, ये नजदीक है, चल दियो सीधा अकेले पार ले दो, খাবেন না। আচ্ছা অটপটি ভাষা মে কানাইয়া সবক তো রিঝা দি, যাব রিঝা দিয়া বড় জাদু জানতা। আচ্ছা কাল তবে সুবে দেখুন গো কাহ করতো এই কাহ করতো কি মারে। আচ্ছা সবনে এসা করিও, ডাল চাল নে পোটলি বাঁধ লিনে লিনো, আর বজরে কি আর টিকড়ি লাড্ডু সব তৈয়ার কর লিনু, আর কাহা হয় কুছ খোয়ে কি লাড্ডু বনবাইও, কেউকি সড়ক রাস্তা চলতে চলতে খাই কি ভুক লাগে যায় সেই সব প্লেন কি উন লোক দেবো কা, বাড়া জেদা ভুক লাগে বড় বড় লোক ভুক জেদা লাগে খাইবে কো চাই, আর ডগড়ে তে চলেঙ্গে আর কাঁটে কুশন মে তো আই কো তো খাইবে কুছ দেনু চাই না, নাই তো থাক যায় তো সব বেঠ যায়, আর গাই দর্শন করিয়ে কুছ দানা পানি লেখে চলিও, তো কানাইয়া নে ইউ খাই দি গায়ে দর্শন কো লেবে কি জরুরত না, হ্যাঁ জরুর গঙ্গা সাগর নাই কে নাই পূজা উজা করকে মনসা কে নাই সব কুছ খাইও, অব মত খানা কই বাস, অব সব সুবেই ঠকড়ে মে বেলগাড়ি জোড়কে বাস, ডগড়া নেই ডগড়া ফগড়া নেই বেল কেসে কাহা নে চলতে হ্যাঁ লাগ লাগদাই উড়কে চলতে হ্যাঁ, ও কাঁটা কুশ পত্থর কঙ্কর হ্যাঁ কুছ নেই মানতে হ্যাঁ খুব চলতে হ্যাঁ, আর ওসমে পাইয়া কেসে হতা থা আজকাল কে যে রবড় কে টায়ার কা আপনে ও পাইয়া দেখা নেই হোগা, গাড়া হতা থা গাড়া চার পাইয়া আর ওসমে নাল লাগতা থা লোহে কা কেসা ইতনে মোটে মোটে ইতনা ইতনা মোটা চওড়া হোগা আর লোহে লকড়ি কে বনতা পায়া গাড়া কা আর লোহে কা নাল, উসকো লেকে হাজার কিলোমিটার চল রে উসমে পাহাড় কে উপর সে এই কাঁটা কুশ কিচড় কুছ নেই হোগা, ওসকা টায়ার পাঞ্চার কি আর বাস গ্যাস ভরনে কি জরুরত নেই, তো গাড়া মে ছকড়ে মে ঘোড়ে মে অভি বঙ্গাল মে অভি উয়া নেই উধার মে উড়িষ্যা মে অভি নেই অভি লোহে কা নাল লাগতে ঘোড়ে কা টাঙা মে লোহে কা নাল লাগতে, তো ও ক্যা কিয়া সব জেসে তেসে করকে চল দিয়া ঘোড়ে মে সওয়ার হো গে সব লোক আর বেলগাড়ি গাড়া পেদল নাচতে গাতে, কানাইয়া নে নন্দগাঁও সে গোবর্ধন তো লে আরে ইয়া দিয়ে কাহা লে ইয়া কাহা গঙ্গা সাগরে, আরে তুই সহল না তোর দেমাগ না বড়ে বুড়ন কি তুই ইউ হি দেমাগ খাই আয়, আরে ইউ না জানে সারে চিরত ইয়াই হ্যাঁ তো কাহা দিয়া, আরে কাহা জানে বলে কানাইয়া তোর দেমাগ খারাপ হয় গো তাই ইউ কাহা গঙ্গা সাগর জানো হ্যাঁ ইয়া কাহা গঙ্গা সাগরে, তো কেনে লাগে আরে গিরিরাজ বাবান কি দোয়াতে তো তুই সব সমাজ লিও না সমস্ত দেবতাকে দর্শে দে সমস্ত সব সব ভেদ কু বজাই দিনি আর কাহ ডরে চিন্তা মত কর বিলকুল চিন্তা মত করো, আমি দেখো গিরিরাজ বাবা পৌঁছা দেন জলদি সব আঁখ বন্ধ করলো সব নে আঁখ বন্ধ কর দিয়া বলো মাতি ভগবান কা নাম করো, হ্যাঁ ভগবান কে নাম করে আর বাস বেঠ গে আঁখ বন্ধ করকে বেঠ গে, তো আচ্ছা করে গঙ্গা আরে ও কৃষ্ণ কামিয়ে করে অবকি ডুবকি লাগে না গঙ্গাজি আয় রে সব নাহেলো সব নাহেলো খাইতে খাইতে রে ডুবকি লাগে সবনে না লিয়ে গিরিরাজ কে আচ্ছা বড়ে মৌকা হ্যাঁ পেলে বার মুঝে ঠগা মুঝে বড়া বনা করকে মেরি পূজা করবায়া আর মেরে কো ঠগ দিয়া হ্যাঁ আপ নেই ঠগ সকতে মে ভি না হুঙ্গা, আর গিরিরাজ বাবা সবকো লেকর কে সব গোতা লাগায়া গঙ্গা মে আর গঙ্গাজি গিরিরাজ বাবা গঙ্গাজি আন্দর চলে গে আর সব লোক টেনে লাগে হ্যাঁ, আর বলদাও নে কানাইয়া নে সবকো পকড় পকড় কে সবকো কিনার লাগা দি সব আয় গে, আচ্ছা আর আগর বলে সব তো না করি বলতে সখানে বলা আরে সারি সারি কানাইয়া তেনে ইউ কইছি ইয়া গঙ্গাজি ই গঙ্গাজি না লেকে পানিতে নাই বাই দিনি আর গঙ্গাজি কে তো তোপে তোপে কোন বানে গো তোয়ে কাহা না লে গঙ্গা কি পানি না লে গা পানি কাহা তে আই গো, হ্যাঁ কই গেল কি ভাইয়া তেরি জয় হো তে তো কেনে নি চল ভাইয়া তুই মানে গো না চল উপর চল উপর পকড় কে সবনে লে গে আলে আগে দেখা দেখ ই কোন হে তোলে ভগবান নারায়ণ জানতা হ্যাঁ নারায়ণ কে চরণ কে ধবন হ্যাঁ গঙ্গাজি তো চলে দেখে ভগবানকে চরণ সে গঙ্গাজি নিচল দেয় আর মানুষ जब वर्जन मंदिर जाएंगे मानसिंगा से घाट में आएंगे तो वहां देखना पड़ेगा बहुत खाई है बना हुआ और वो खाई में अभी मंदिर मंदिर नहीं बनाना कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग बनाया है क्योंकि ऊपर से बना रखा है लोगों ने खाई बड़ा है बहुत बड़ा वहाँ बरसात के पानी बहुत आगे उसमें चढ़ता है तो वो देख चढ़ रहे ना कितने विश्वास करने खाने यहाँ के लिए सब लोग आए सब लोग आकर के हरिदेव की बड़ी पूजा करी और जो कुछ ले आए सब भोग लगाए और सबने ये मनसा मनसना मतलब संकल्प किया मनोती की मनसना मतलब मनोती करना कि हमारा कन्हैया बढ़िया रहे हमारा व्रत की रक्षा कन्हैया करते है अरे मैं ना करूँ गिरिराज बाबा करे हरदेव करते है नहीं बाबा हरदेव हे भगवान हे नारायण हे चक्रपाणी हे गिरिराज बाबा सबन की भला करियो किंतु मेरा कन्हैया पहले भला करियो मनसा देख कन्हैया के लिए मैं आज 12 महीना की 12 लड्डू अधिक की 2 लड्डू 14 लड्डू बाबा को दे रहा हूँ ए मैं कन्हैया के लिए तो कपड़ा पहना हूँ मैं कन्हैया के लिए तो अंगूठी चढ़ाऊँ मैं कन्हैया के लिए तो पानी चढ़ाऊँ दूध चढ़ाऊँ ऐसे चलो खिचड़ी रान के खिलाऊँ सब मिल करके जगह जगह पर हणिया अभी यदि कभी गंगा जाने की सुध हुआ और गंगा सागर तब देखेंगे हणिया बिकता है नए नए मिट्टी का और सब लोग लेंगे अपने 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 लकड़ी भी मिलते हैं इतना हजार लोगों के लिए और नहीं तो लोग तो लंगर खोल ही देते हैं लोग तो इतना बनाते हैं रामकृष्ण मिशन भारत आश्रम और लोगों ने गोड़ी मठ वाले ने और उन्होंने लाखों लाख मन खिचड़ी बनते जो आते सुखा है
टापू में उधर
कहा नहीं गंगा सागर में
टापू जो है
नहीं नहीं वो ऊपर भी सुख जगह है ऊपर भी हजारों एकड़ जमीन है
ऊपर
मतलब समुद्र खाड़ी के ऊपर जमीन नहीं है किस बुद्धि है बता वो खाड़ी के ऊपर की जमीनों में वहाँ भी कैंप लगते हैं
पानी आगे उससे नहीं बढ़ता
ना 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 पानी तो कभी समुद्र को पार नहीं करते ना ये तो समुद्र का नियम है तो वहाँ तो मन गाँव है व्यापार वाणिज्य है सभी कुछ
समुद्र तट से कितनी दूर है वो स्टीमर
स्टीमर स्टीमर से तो फिर स्टीमर ऐसे है टापू में छोड़ देगा आपको फिर टापू पर करके पैदल जाके आपको गंगा की तरफ जाना पड़ेगा वो जो टापू है तो सब कुछ है अच्छा तो सबने खिचड़ी खिचड़ी बनवाया खाया पिया अब सबने मन से सबसे कन्हैया की भलाई मांगा क्योंकि कन्हैया प्यारा है ना और उस नीति को अवलंबन करके लोगों ने क्या किया अपने अपने भलाई के लिए आज के दिन कुछ मनसा थे किंतु वो भी यदि भगवान के सामने भगवान के लिए करते नहीं संकल्प करके पानी देकर छोड़ देंगे कि